आज्ञा में संभोग की पुष्टि नहीं है। का मतलब द्वापर में जाना चाहिए और महात्मा के सेवक उनके सेवक ये सभी लोग अधर्म का विनाश किया जिसके व्यवहार से हुए थे पानी कारण से हुए सर्वम चराचर पाप को विध्वंस करने वाले हैं। इसके नाम मात्र के स्मरण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका उदाहरण वाल्मीकि हरियाणी और लाखों लोग हैं नाम के कारण और जो पर्वती गोपीजनों के ज्ञान भाव से काम वर्णन करके परमुखारी की कार्य किया था मेरी वर्णना मेरी मैंने दुख क्या दुख गोपियों के ज्ञान भाव के होने से मिलने में बहुत दूर रहता है। कृष्ण को भी गोपियों को भी दूर रखता है तो इसका जो ग्रह होता है दुख होता है दुखी भी कार दिया है किंतु इसमें कोई उसका अपराध नहीं है क्योंकि श्री मुखे नदुमधुर मुखे नास्य के द्वारा इस प्रकार पक्षी को राहत करने वाले आया तो समझ सबके दुखों का हर के बारे में विशेष करके भूमिया कृष्ण को उपी भाव से नजर करती है जाति थी और कृष्ण भी इस परि को उपति मान करके उनके उसी प्रकार से ही रूप से रीना जुलना लिखा है। जो कुछ भी रिहास है वो जान बुद्धि से उत्पत्ति भाव है इसलिए कृष्ण को भी जन मुक्तियों से कर रहे हैं जिधर दूरी होने देगी बहुत संकट है बहुत दुर्लभ और मुक्तियों के लिए कृष्ण का भी बहुत प्रगति है क्योंकि मृदु मधु हास्य के द्वारा एक प्रकार पक्षी स्वभाव कृष्ण का स्वभाव है लोगों का चित्त हर्ष कर रहते हैं और वह ऐसी गृह के हिसाब से रहते हैं तथापि गोपिया गोपिया जब से चित्त विमोह हसी हास्य से अपने काम गोलिया से ही हाथी गुणा हुआ जैसे कि गोपियों का चित्त दृष्ट करते हैं अपने स्मृति भाव के मुस्कान से कभी गोपियां एक दूसरे की मधुर हास्य और उसी हास्य का गुणा निभा करती है गुणकारी करते हैं अतः इसमें कृषि की करना के अत्यंत और कुछ नहीं देखा जाता सब चीजों में कृष्ण की करना है इसलिए सुश्री शक्ति ने कहना मंदमो स्थान यहाँ पर कृष्ण का बोला गया है। अतः अपार विरोध अध्यय उपस्थिति यहाँ पर विरोध अस्पष्ट विरोधी वाक्य है। सत्ता को खंडन करते हैं और फिर उनको विरासा प्रश्न भी देते हैं। दोनों खंडन होती है, उनका गुणान प्राप्ति करती है और भूखियों के हृदय में उस मंत्र को स्थान से साफ मंथन करते हैं। काम का संघर्ष भी हुआ है इसमें भगवान का भक्त राष्ट्र इत्यादि गुरु का वर्णन किया गया। या जो मैंने कहा कि शिष्यों के दर्शन है मैंने निंदा कर लिया और भी अर्थ हो सकते हैं क्यों न तो मैंने निंदा थोड़ा सा इसके लिए इसलिए निंदा का भारत अपरंपार है। शिष्यों का अर्थ भी बहुत है किंतु मैंने निंदा सुना जिसमें चार साढ़े चौबीस अक्षर हैं किसी के द्वारा कृष्ण की उपासना होती है। द्वारका के प्रद्युम कामदेव हैं प्रद्युम और लौकिक जो कामदेव हैं ये सब कृष्ण के नौ प्रकार और अंत में छाया प्रकार है जगत का इच्छा का प्रकार है और माता के अनुभव प्रकार है। इसलिए साधक भक्त के लिए धाम यात्री की बहुत आवश्यकता है। गोपाल मंत्र तो है ही है संबंध देने वाले और ये है उपासना का मंत्र संबंध के बाद में क्या करके उसकी सेवा होती है इंसान का श्री ने बताया। जो लोग सरकार को सबसे बुनियादी जो गोपाल मंत्र और काम का श्री इत्यादि की उपासना करेंगे धीरे धीरे उनके प्राप्त ग्रंथों में और केवल की अनुभूति कितने भी अनुभूति उनके विषय में होगी।
जरा सब समय स्कूल में जाने से स्कूल में भारी हो जाता है इसलिए अधिक किया जाता है। हम विष्णु पार्क के समय भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी के तीसरे कमलों में कोटि कोटि श्रद्धा पर पार्वती पुष्पांजलि अर्पित करता है। तत्पश्चात परमागण्य त्रिदंडिकागण वैष्णवगण वैष्णीगण यानी परमागण्य श्रोतागण आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी एक वर्ष पहले संस्थापित इसे बांके बिहारी मित्र मंडल और श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ और दूसरी समितियों के प्रयास से यहाँ पर हरी कथा श्रवण करने के लिए भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुझे विशेष करके ये सुनकर के प्रसन्नता हुई कि इस बांके बिहारी मित्र मंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पाश्चात्य की बुरी सभ्यता को रोकना है जो भारत में पश्चात देशों की बुरी सभ्यता का प्रभाव कम से कम पड़े उसको रोकने के प्रयास के लिए किया है और इनका प्रयास बहुत ही उच्च है। विशेष करके पहले दिल्ली के कोर्टों में कचहरियों में डाइवोर्स का मामला बहुत कम था, 5-10 वर्ष पहले बहुत उन्हें गिने थे, आज तो उसकी संख्या करीब करीब लाखों के रूप में पहुंच चुकी है। वैसे पाश्चात्य देश वाले उस सभ्यता से तंग आ गए हैं और विश्व के कोने कोने में जहाँ जहाँ मैं गया वो भारतीय संस्कृति ग्रहण कर रहे हैं और हम उन लोगों का अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ के लोग यथार्थ में आज हमारे देश की और विश्व की समस्या क्या है और उसका निदान क्या है, विश्व के लोग प्राणी मात्र कैसे सुखी रह सकते हैं, हमारे पुराने प्राचीन संत लोग नारद से लेकर के ब्रह्मा से लेकर और अब के जितने संत हो गए हैं इसकी चेष्टा करते हैं। आजकल आप लोग जानते हैं कि साइंस और कंप्यूटरों ने आज कैसे उन्नति की है। एक व्यक्ति की आंख दूसरे में लगा देना, किसी का दूसरे का हृदय और किडनी एक शरीर में लगा देना आम बात है। इस तरह से हम देखते हैं रसोई घर से लेकर और साइंस में ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में विश्व खूब उन्नत हो रहा है। बड़ी आश्चर्यजनक डिस्कवरियां हो रही हैं। अस्पतालों में जाने से या एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह में पहुंचना ये आजकल की आम बातें हो गई हैं। उन्नति तो हुई है यह बात ठीक है, किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है और वही पहलू समस्या का कारण बन गया है। पहलू है यहाँ पहले प्रेम, धर्म माने होता है प्रेम, जगत मात्र का प्राणी मात्र का धर्म प्रेम है। एक परिवार में हम रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, किंतु वह प्रेम आज सब नहीं है। अर्थात एक एक व्यक्ति अपने को असहाय समझता है, इसलिए यह समस्या प्रेम की है और धर्म प्रेम करना सिखलाता है। बहुत से आजकल ऐसे धर्म हैं, यदि आप खुदा खुदा अल्लाह न करें तो आपको क्या कहते हैं दादी है? नहीं काफी है, उनकी नजरों में जो मुस्लिम नहीं है वो सब काफी है कत्ल करने के लिए है, किंतु सबको समझना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए कि विश्व का रचयिता एक है। भाषा के भेद से, कंट्री के भेद से, देश के भेद से, समय के भेद से उसी एक ही प्रभु का नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप में देखा जाता है, सुना जाता है, किंतु एक ही परमेश्वर, एक ही वही गॉड है, वही खुदा है, वही विश्व का सृजन करने वाला है, दूसरा नहीं, सबके प्राणियों में वही है, लिए। किंतु आज धर्म के नाम पर चारों तरफ में घृणा और द्वेष फैल रहा है, विवाद और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। धर्म यह नहीं सिखला है, धर्म तो प्रेम की भाषा है। गॉड इज लव, लव इज गॉड। कृष्ण का स्वरूप देखिए, गीता में कहीं भी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इत्यादि का नाम नहीं लिया, आत्मधर्म कहा। श्रीमद भागवत विश्व की सबसे श्रेष्ठ महान ग्रंथ है। यदि गीता प्रारंभिक पुस्तक है धर्म राज्य की, तो श्रीमद भागवत एम ए पी एच डी का वह ग्रंथ है जो विश्व की सारी समस्याओं का सार्वजनिक सार्वजनिक सार्वदैशिक समस्याओं का हल उसमें कहा गया है। इसलिए हम भागवत की कथा सुनाएंगे, उसका उदाहरण देंगे। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कहते हैं किसको? भक्ति तो सभी करते हैं, किंतु बजाय खास समय वो भक्ति नहीं होता। इसे इसकी रूपरेखाएं हम बतलाएंगे, उसका उदाहरण देंगे, और कैसे मनुष्य अपने जीवन में सुखी हो सकता है, लोक परलोक में सुखी हो सकता है, इन कथाओं के माध्यम से यदि हम परिवेशन करने की
चेष्टा।
अब हम भक्ति के संबंध में बतलाएंगे, तब तक ऐसे कम हो गया प्रकट हुए 5000 कुछ वर्ष हो गए, और उनके साथ ही साथ कलयुग का आगमन हुआ। कहते ही हमारे भारतवर्ष के 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य में एकत्रित हुए, उनका इसी तरह से कथा का सत्र हुआ। वो विचार कर रहे थे किस प्रकार कलयुग के प्रभाव से बचा जाए। स्त्री और पुरुष, पुरुष स्वेच्छाचारी, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी बन जाएंगी कलयुग के प्रभाव से। घोर कलयुग में पातिव्रत धर्म सीता अरुन्नति इत्यादि के समान नहीं देखने में मिलेगा। लोग सत्य से भ्रष्ट हो जाएंगे। इन समस्याओं की मूल जड़ देहात मवाद, इस शरीर में यह शरीर को ही आत्मा समझना, मैं समझना। आप लोग समझेंगे, शरीर एक हार चांद रक्त पैखाना पेशाब की थैली है, किंतु सौभाग्य से इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। जितना ही इसका ऑपरेशन किया जाए, जड़ नेत्रों से आत्मा और परमात्मा नहीं दिखेगा। इसलिए आधुनिक जगत के साइंटिस्ट और ये सब लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। नेचर से ही जगत अपने आप हो गया, ऐसी कितनी तरह की मान्यताएं नास्तिक है। किंतु इसके मूल में एक प्रभु है, इसलिए ये शरीर मैं नहीं हूं, पहला ये भागवत की कथा है। जीव का निर्वाह किया जाए, शरीर को अपने मन से और संसारिक जो हमारी क्रियाएं हैं वो इसलिए हो कि आत्मा और परमात्मा का इसी मनुष्य जीवन में हम लोग अनुसंधान करते हैं, और फिर इस मनुष्य जन्म में या किसी जन्म में नहीं आना पड़े, दोषों से सदा के लिए निवृत्ति हो जाए। किंतु हम देह में, इस मत्स्यशील शरीर में मैं का अभिमान रखते हैं, इसको देहात्म बात करते हैं। इसलिए वो लोग विचार करने लगे, ऋषि लोग, भयंकर कलयुग आने वाला है, लोग अपने बच्चों को भी मार करके खा जाएंगे। अभी तो हमने सुना था कि कहाँ लखनऊ या कहाँ होटल रेस्टोरेंट में एक बच्चे को मार करके उसका मन परवेशन करते थे। अभी ये घटनाएं बढ़ेंगी, कलयुग का प्रभाव घोर होगा, कथाएं ऐसे ही नहीं मिलेंगी कुछ दिनों के बाद में। इसलिए हम लोगों को जीवन धारण करते हुए भगवान का कुछ भजन करना चाहिए। एक बात और मैं आप लोगों को सावधान कर दूं, आजकल जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं और उसके बाद में लाखों रुपए भी लिए जा रहे हैं, तथा वाचक रुपया बिना लिए कथा नहीं करता, और उसमें तबला सारंगी और दूसरे दूसरे वाद्य यंत्रों का और संगीत का, लौकिक संगीत का समावेश होता है, उसे हरी कथा ढक जाती है। मैं आप लोगों को ऐसी कथाएं कहने के लिए नहीं आया हूँ, जो भागवत में सच्ची सच्ची कथाएं हैं, जो मनोरंजन के लिए नहीं है, मन को कंट्रोल करने के लिए है। इसलिए मैं मनोरंजन करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, मुझे पैसे का भी लोभ नहीं है जो यहाँ से पैसा मिलेगा, पैसे के लिए भी हरि कथा नहीं सुनाने आया, न पैसे के लिए हमको आगे करना है। दो रोटी वृंदावन में मिल जाती है, बड़ी भली भांति गुजारा हो जाता है, फिर देश विदेश में जो जाते हैं इस कथा के प्रचार के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, यही हमारी गुरु परंपरा की नीतियाँ हैं। तो मैं मनोरंजन करने के लिए नहीं आया, मनोरंजन नहीं करूँगा, आप लोगों के भला के लिए यदि कड़वी सत्य बातें होंगी तो उसको भी कहूँगा जो व्यास जी ने और सुखदेव गोस्वामी ने जनता के सामने उपस्थित की है, इसलिए विचलित न होंगे। बहुत सी ऐसी बातें हैं, कहते हैं श्रीमद् भागवत में कड़वी बात यदि पिता माता यहाँ तक कि गुरु भाई पत्नी और पति भी भगवान के भजन में सहायक न हो, इसमें हमारा साथ नहीं दे तो उनको भी त्याग कर देना चाहिए। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी शास्त्र ऐसा कहने के लिए तैयार नहीं है, लोगों का मनोरंजन करेंगे। इसलिए एक मात्र भागवत की ऐसी सच्ची लोगों के कल्याण की बातें कह सकती है। मैं यथाजूथ रूप में, हम लोग तो उतना सुंदर वो बॉम्बे के कीर्तन करने वाले कौन है, विनोद अग्रवाल और ये सब हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग तो हरी बोल करते हैं और जिसे कल्याण हो ऐसे ही बात करेंगे। जो कथा पैसे के लिए होती है वो बिक जाती है, उस कथा से कल्याण नहीं होता, चाहे लाख कोई कथा सुनाए। इसलिए कथा वाचक में सुखदेव गोस्वामी जी जैसे गुण हो, चैतन्य महाप्रभु जैसे गुण हो, जो केवल हम लोगों के कल्याण के लिए करते हैं। तो कलयुग के पहले ऋषि लोग विचार करने लगे, उनमें से सोनक आदि भी कुछ ऋषि थे, भगवान के परम भक्त थे, उन्होंने सुत गोस्वामी जी से कहा, ये आप तो अपने गुरु जी से समस्त शास्त्रों का तात्पर्य समझा है, वेदों के अखिल वेदों के ज्ञाता हैं, सारे शंकाओं को दूर करने वाले हैं, इसलिए कृपा करके अपने गुरु से जो सुना है, बलदेव जी की प्रेरणात्मक शक्ति से जो कुछ आपने समझा है, जिसमें आत्मा का कल्याण हो, अतः साधो अत्र जत्सारं समुद्धित्य मनीषया प्रूहणः तत्प्रधानः यह आत्मा प्रसीदति। प्रश्न किया, आत्मा जैसे प्रसन्न हो, शरीर प्रसन्न हो, इसके लिए नहीं पूछा, शरीर तो आप चाहे और न चाहे, लाख साइंटिस्ट मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, बुढ़ापा को नहीं बंद कर सकते एक पल के लिए भी, और शरीर भी अपने समय पर जाएगा, ये आत्मा जैसा अमर नहीं है, ये तो जाएगा ही, इसके लिए चिंता न करके कहते हैं अतो साधो, जगत के लिए जो कल्याणकारी बातें हैं, कल्याणकारी बातें हैं हमसे बतलाइए क्यों प्रायण और आयु सब। कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम रह गई है। आप सतयुग की बात सुनेंगे, एक एक व्यक्ति लाखों वर्ष की आयु होती थी, लाखों वर्ष तो 60,000 वर्ष तो वो तपस्या में ही उनका चला जाता था, लाखों वर्ष की आयु। द्वापर में त्रेता में कुछ कम हुई, तो अभी साथ साथ राम श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक राज्य किया, तो 11-12 हजार वर्ष आम बात। द्वापर में और कम हो गया तो हजारों की उम्र थी। अब कलयुग में इसको मान लिए यद्यपि कोई कोई 125 वर्ष भी गिरी कर सकते हैं, किंतु कुल मिला करके एक वर्ष 100 वर्ष की आयु रखी गई। और 100 वर्ष की आयु में आधी तो सोने में चली गई, और अजेंद्रिय व्यक्ति जो शराब इत्यादि पीते हैं वो तो बहुत अधिक सोते हैं, कोई उस पर अंकुश नहीं है। और आधी 50 वर्ष की आयु सोने में चली गई, और किसी विषय में एक्सपर्ट होने के लिए 20-25 वर्ष आम बात, ये पढ़ने लिखने एक्सपर्ट होने में चला गया। और 80 वर्ष से 100 वर्ष की आयु यो ही चली जाती है वृद्धावस्था। 10 वर्ष की आयु बचती है, इसमें विवाह शादी, बच्चों को लिखाना पढ़ाना योग्य बनाना इसमें चला जाता है। भजन करेंगे कब, इसलिए कहते हैं प्रायण अल्प आयु सब्दा पलव जगा जगाऊ। कलयुग में बहुत थोड़ी सी उम्र है और मंदा बुद्धि भी मंद है, अपने को तो बहुत बुद्धिमान समझते हैं किंतु आत्मकल्याण की बातें नहीं सोचते, शरीर के लिए ही सोचते हैं। संयुक्त राष्ट्र है, उसमें विश्व के लिए कितनी बातें होती हैं, किंतु सभी शरीर के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए कुछ भी उसमें नहीं होती। आज तक कुछ कर भी नहीं सके हैं, कर नहीं सकते। मंद मतयो, मंद बुद्धि है, मंद भाग करते हैं, अच्छा के लिए हो जाता है बुरा। और ही उपद्रव, सब तरह के उपद्रव है, कितने तरह के रोग लगे हैं। पास पड़ोसी के लोग हैं जो आपको चैन से जीने नहीं देंगे, तरह तरह की समस्याएं हैं। इसलिए कहते हैं हे साधो, हे सुध गोस्वामी जी, आप अपनी बुद्धि से शास्त्रों का तात्पर्य क्या है, जीव कैसे सुखी हो सकता है, मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है, हम लोग श्रद्धा पूर्वक आपके पास में आए हैं, इसलिए आत्मा कैसे प्रसन्न होती है इसका उपाय बताइए। शरीर के प्रसन्न होने के लिए नहीं पूछा, आत्मा के लिए। हम शरीर के सुखी होने से सुखी नहीं हो सकते, लाख कोई चेष्टा करे शरीर सुखी होने के लिए मरेगा ही, और अपने साथ इस कमाई का एक कौड़ी दमड़ी भी साथ नहीं ले जाना है, ये भी समझो। केवल गधे की तरह भागवत में ऐसा लिखा, धर्म ही नहीं ना पशु भी समान, दिन रात परिश्रम करता है, उसका एक कौड़ी भी साथ में नहीं लेकर के जाएगा। इसलिए आत्मा कैसे प्रसन्न हो आप कृपा करके बतलाइए। प्रश्न सुन करके सुख गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने गुरु को प्रणाम कर कहने लगे, सबई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रजोक्षजे अह सुख्य अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तम। मनुष्य मात्र के लिए एक धर्म है और एक परम धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ये जीवन की को सुचारू रूप से चलाने की ये व्यवस्थाएं मात्र हैं, परम धर्म नहीं है। हमारा वर्णाश्रम धर्म उस परम धर्म के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। इसमें भगवत भक्ति इत्यादि की बातें हैं, विश्व के किसी भी धर्म में ऐसी बातें नहीं है। तो कहते हैं सवई पुंसा, निश्चित रूप में प्राणी मात्र के लिए परम धर्म एक है। वो परम धर्म क्या है? इंद्रियों से अतीत जो भगवत तत्व हैं, उनके प्रति अहे चुकी बिना कारण की भक्ति हो, बिना किसी हेतु की। जैसे कोई एक व्यक्ति दुखी है, उसका लड़का अनएम्प्लॉयड है, बीमार रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में गया और चौखट को दबाने लगा, मानो शंकर जी की सेवा कर रहा हूं, और मन ही मन संकल्प किया, हे प्रभु हमारा ये रोग दूर हो गया, हमारी आर्थिक स्थिति हो जाएगी अच्छी, तो एक रुपए का बताशा आपको भोग लग रहा होगा। ये क्या हुआ? ये भक्ति नहीं हुई, अपने स्वार्थ के लिए की। तो भक्ति किसको कहते हैं? उसी को समस्त शास्त्रों का तात्पर्य लेकर और संक्षेप में बताया, अन्नाभिलाषिता शून्य, ज्ञान का मार्ग जनापितम, अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूप। बड़े सावधानी से श्रवण करेंगे, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान का मार्ग जनापितम, अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूप। अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम, निरंतर कई धारावक अभिन्न गति से गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यदि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए ही अपने तन मन वचन और सारी इंद्रियों की सारी चेष्टाओं को और भावनाओं को यदि लगाया जाए तो इसको भक्ति कहते हैं। फिर से समझिए, यदि अनु निरंतर तैल धारावत अविच्छिन्न गति से हमारे तन मन वचन और शरीर की सारी इंद्रियाओं और भावनाओं की चेष्टा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए उद्देश्य से ही यदि की जाती है तो उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति में कुछ ऐसी चीजें हैं जो भक्ति नहीं है किंतु हम लोग उसको भक्ति समझ लेते हैं। यही भक्ति में जो जब तटस्थ दो लक्षण, गौण दो लक्षण आ जाते हैं तो उसको उत्तमा भक्ति कहते हैं। पहला, भगवान का भजन कर रहे हैं उसमें लौकिक किसी प्रकार की अभिलाषा न हो, और ज्ञान और कर्म के द्वारा भक्ति होती है, जब तक ऐसा विचार रहेगा तब तक वो भक्ति नहीं है। इसको सरल शब्दों में फिर से मैं बतला रहा हूं। ध्रुव जी हैं भगवान की भक्ति की, और रेकर्ड ये बतलाया 6 महीने के अंदर भगवान की प्राप्ति हो गई है। भगवान ने उनको दर्शन दिए संत चक्र गदा पद्म के रूप में, किंतु उनका यह भक्ति भक्ति उत्तम भक्ति नहीं है, सकाम भक्ति। ये लौकिक कामना आ गई ना, ये पिता के राज्य के लिए उन्होंने किया था, जो पिताजी का राज्य मिल जाए या इससे भी श्रेष्ठ विश्व का राज्य हमें मिल जाए, ये लौकिक इच्छा है। इसलिए भक्ति नहीं, सकाम भक्ति हुई, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति प्रहलाद महाराज की हो सकती है। कैसे? जब नृसिंह देव ने प्रहलाद की रक्षा के लिए जब हिरण्यकश्यपु को मारा, प्रहलाद जी उनकी गोदी में चढ़ गए। प्रभु ने कहा कि बल मांगो, तुम्हें बल मांगने की इच्छा यदि हमारे अंदर है तो संपूर्ण रूप से दूर हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर में कोई भी अभिलाषा संसारिक नहीं है, तुम दूसरा बल मांगो। उन्होंने कहा कि यदि आप प्रसन्न है तो हमारे पिताजी को मुक्त कर दीजिए। उन्होंने आपके चरण में अपराध किया है, वैष्णव के चरण में, ये भी हो गया है। जिस कुल में एक साधारण भक्त जन्म ग्रहण करता है उसके सात कुलों का अपने आप उद्धार हो जाता है। जिस कुल में मध्यम श्रेणी के भक्त हों तो 14 पीढ़ी के लोग का उद्धार हो जाता है। और जो व्यक्ति उत्तम भक्त है तुम्हारे जैसे उसके 31 पीढ़ी के पृथ्वी का उद्धार हो जाता है। तुम चिंता मत करो, सभी बर मांगो। तुमने बर मांगा कि जगत के लोग बड़े दुखी हैं, हम अपनी भक्ति का फल चाहते हैं कि उनको मुक्त कर दीजिए, मैं उनका कुकर्म लेकर के संसार में मैं भोगता रहूं जन्म जन्म। भगवान बड़े खुश हैं। हमारी और तुम्हारी कथाओं का जो कथन करेंगे उन सबको हमें मुक्त कर दें। इसलिए प्रहलाद महाराज जी की शुद्ध भक्ति। इस विषय में ध्रुव जी का चरित्र संक्षेप में अभिषेक महाराज जी बतलाएंगे। महाराज कहाँ तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद तथा माननीय अतिथि वर्ग, समस्त सज्जनों, माताएं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम तथा हार्दिक अभिनंदन है। अभी अभी आपने श्रवण किया है श्री गुरु जी के प्रवचन में ही जो भक्ति दो प्रकार से देखी जा रही है, एक सकाम भक्ति, दूसरा है निष्काम भक्ति। जहाँ अपने सुख की लालसा होती है, कुछ प्राप्ति की इच्छा होती है, अपने लिए भगवान का भजन या भक्ति उपासना की जाती है, वहाँ सकाम भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीव चाहे कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हमारे पास आ जाए। इसलिए उन्होंने कहा हे अर्जुन, भक्त मेरे पास आते हैं जब वे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी बनते। संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो आर्त नहीं होता, दुखी नहीं होता, या किसी के अंदर धन की इच्छा नहीं, ऐसा तो देखा नहीं जाता है। सभी कुछ न कुछ चाहते हैं, परंतु जब सुकृति होती है, भगवत संबंधी गुरु वैष्णवों की सेवा, धाम की सेवा, तुलसी की सेवा करते हैं, उससे सुकृति बनती है, तब वे मेरे पास आया करते। इसलिए श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में दिखाया, प्राचीन काल में उत्तानपाद महाराज के दो पुत्र हुए, जिनमें सुमिति से ध्रुव हुए जो कि अति छोटा सा बालक, और सुरुचि नाम की पत्नी से उनको एक और बालक हुआ जो कि उत्तम नाम से जाना जाता है। अब ये बालक ध्रुव जो था एक दिन पिताजी के गोद में बैठने को चाहा, जबकि पिताजी राज सिंहासन में बैठे थे। जैसे ही वो बालक गोदी में बैठना चाहा, उतने में ही पास में सुरुचि खड़ी थी, उनने देख लिया बालक की इच्छा है पिताजी के गोदी में बैठने को। साथ ही साथ डपटते हुए बोल दिया, बालक ध्रुव, तुम इस रूप में पिताजी के गोदी में नहीं बैठ सकता। जब तक इस शरीर को छोड़कर मेरे कोख में जन्म नहीं लेता, तब तक तुम इस राज सिंहासन के अधिकारी नहीं। जाओ यहाँ से। इस तरह से बड़े जोर से डांट लगा दी, बालक का मन खराब हो। तब वो बालक वहां से रोता हुआ चला अपने माता के पास। माता को पहले से ही सूचना मिल गई, तब से रोने लगी कि अवहगिन के बालक की दशा ऐसी पता है। जबकि वो बालक भी रोता है और माँ भी रोती है। तब माँ ने रोते हुए उस बालक को समझाया, बालक हे ध्रुव, तुम्हारे पूर्वजों ने जिस परम पुरुष भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए इस जगत में सुख संपदा को प्राप्त हुए तथा परम जगत में जाकर वे नित्य आनंद में डूब गए, चिर शांति चिर सुख को प्राप्त हुए, ऐसे भगवान श्री हरि की तुम आराधना करो। वे कमल लोचन हरि अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उस समय ध्रुव जो कि छोटा सा बालक है, माता जी के वचन पर सुदृढ़ निश्चय करते हुए वन की ओर चल दिए। जहाँ घनाघोर जंगल, जहाँ बड़े बड़े हिंस भयानक पशु पक्षी प्राणी समुदाय है, ऐसे घने वन में प्रवेश किया। कमल लोचन हरि कहाँ है, हरि कहाँ। जब उसके अंदर में यह आंतरिक भावना जाग उठी कि हमें भगवान श्री हरि का दर्शन करना है, उनकी प्राप्ति अवश्य करना, ऐसे समय में भगवान श्री हरि वे समझ गए, जान गए, क्योंकि वे अंतर्यामी सबके हृदय में निवास करते घट घट वासी, उन्हें जानने में अधिक समय नहीं लगता है, परंतु हमारी भावना में समय लग जाता है। क्योंकि हम सच्चे दिल से न तो प्रभु को पुकारते हैं और न ही हम उनको चाहते हैं, हम चाहते हैं संसार को, इसलिए भगवान से हम अति दूर। जब हम उनसे निकट होना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तब वे हमें हमारे सामने सच्चे गुरु को भेज देते हैं। जैसे कि भगवान नारायण ने नारद को कहा कि हे नारद, हमारा एक प्रिय भक्त बालक ध्रुव मुझको फुका रहा है, उसे मार्गदर्शन कराना है, वह जानता नहीं है, तुम्हें अति शीघ्र वहाँ जाने का है। भगवान का आदेश हो गया। इतने में श्री नारद के तत्क्षणात वहीं पर उपस्थित हो गए। बोले कि बालक, कैसे तुम यहाँ पर घूम रहे हो? यहाँ बाघ भल्लू से गंधर कितने हिंस प्राणी है, ऐसे भय संकुल भयावह प्राणियों के बीच में इस जंगल में घूमना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम लौट जा। बालक कहता है, नहीं, मैं तो कैसे भी नहीं लौट सकता, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने दूसरी माँ ने हमें डांटा फटकारा है, तिरस्कार किया है, मैं कभी भी नहीं लौटूंगा। बोले, अच्छा, माँ ने तिरस्कार किया है? अरे, माँ शासन करती है, डांटती है, फिर प्यार भी तो करती है, अतः तुम्हें लौटना चाहिए, देखना जाने से तुम्हें अवश्य प्यार करेंगे। बोले, नहीं, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैं मरना जानता हूँ परंतु पीठ नहीं दिखा सकता। जब प्रभु के भजन के लिए निकला तो वह मेरा सुदृढ़ संकल्प है, अवश्य मैं भजन करूँगा। जबकि उसकी दृढ़ता पर निश्चयता देखते हुए श्री नारद जी ने कहा, अच्छा बालक, जाओ इस यमुना में स्नान करके आओ, मेरे पास अभी आ जाओ, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। तत्क्षणात जबकि वह स्नान करके लौटा, तब श्री नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया। मंत्र दे करके विधि विधान बतलाई कि इस रूप में तुम मंत्र का जप करना भगवान का पूजा पाठ है। और अति शीघ्र दे, अवश्य दर्शन देंगे। उस समय बालक ध्रुव ने जैसे ही मंत्र प्राप्त किया, श्री गुरु जी की आज्ञा को प्राप्त करते हुए वे मधुवन मोहनी मधुवन टीला में पहुंचे। वहां जाकर के वे भगवान की आराधना में तत्पर हो गए और ऐसे करते करते उन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को, वाणी को कंट्रोल किया। धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांचवें महीना, छठवें महीना में अन्न भोजन पान आदि छोड़ करके केवल वायु पर जीवित रहने लगे और उसको भी कंट्रोल करते हुए भगवान में चित्त लगा लिया। उस समय समस्त देवताओं ने प्रार्थना की, तब कि भगवान श्री हरि उनके हृदय से प्रकट होकर सामने अवतरित हुए। बोलो ध्रुव नारायण की। इस प्रकार ध्रुव नारायण वे चतुर्भुज रूप में यज्ञ के सामने प्रकट हो गए। उस समय बालक ध्रुव ने उन्हें देखा, देखते ही बड़े आनंद में विभोर हैं, परंतु वे जानते नहीं कैसे भगवान की स्तुति प्रार्थना करनी है। उस समय भगवान ने अपना शंख लेकर के उसके गाल पर छुला दिया। यही छुला दी इतने में उनके मुंह से वेद मंत्र निकलने लगे। भगवान की स्तुति प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा, ध्रुव तुमने मेरी आराधना की है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, परंतु तुम क्या चाहते हो बोलो। जो कोई तुम्हारी इच्छा हो मैं अवश्य पूरा करूँगा। मेरा दर्शन अब